जय मां। ये पहले थोड़ा सा इस विषय के बारे में, क्योंकि ये जो वाक्य है, फ्रेज है, द डायमंड स्क्रिप्ट ऑफ द इम्पेरिशेबल, ये क्यों चुना गया है। तो ये सावित्री में ही, सावित्री के विषय में, सावित्री में सब कुछ है, और सावित्री में ही सावित्री के विषय में भी बताया हुआ है कि सावित्री क्या है। अगर कोई पूछे कि ये पुस्तक क्या है, इसका क्या परिचय है, तो हम लोग सावित्री में ही इसका परिचय पाते हैं। और ये पेज नंबर 232 पर है। पूरा एक पैसेज है जो द बुक ऑफ ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स में फॉल्सहुड का जो जगत है, द वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड, इसके अंत में आता है। क्योंकि शेरविंद ने ये पुस्तक जो प्रकट हुई है, वो हम लोग सब जानते हैं कि कैसे धीरे धीरे उन्होंने बारह बार क्यों लिखा, क्योंकि वो उच्चतम सत्य को धरती पर उतारना चाह रहे हैं, और ये उनका मुख्य प्रयोजन है। और उच्चतम सत्य क्या है, उसकी हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन इन्होंने कैसे लिखा है, शेरविंद ने इसको, ये तब लिखा जब उन्होंने अंधकार की गहराई में उतर करके वहाँ भी उसी मूल स्रोत को पा लिया जो चेतना के शिखरों की ऊंचाई में मिलता है। तो जब हम यह पा लेते हैं, तो दोनों का जो लिंक है वो मिल जाता है, कि वही जो ऊपर है वही नीचे में छिपा हुआ है, और अपने आप को उसने एक अंधकार के आविष्ठन में, अंधकार के एक कवरिंग में लपेटा हुआ है। तो अब सावित्री का परिचय है यहाँ पर। दिस स्किलफुल पेन मैन्स अनसीन फिंगर रोट। अब देखिए, शेरविंद यहाँ पेन मैन जो लिख रहे हैं, पी कैपिटल है, यानी वास्तव में ये बाहर से देखा जाए तो शेरविंद की हाथ से या टाइपराइटर पर लिखा गया है, लेकिन इसके पीछे कौन है, इसके पीछे पेन मैन, वह जो सारे सृष्टि में वेद को लिख रहे हैं वही हैं, यानी ये भगवान की लिखी हुई किताब है। और अनसीन फिंगर, तो पूरा एकदम स्पष्ट कर रहे हैं श्री अरविंद कि यह एक इंट्यूशन के द्वारा, अंतर्भाष के द्वारा, आंतरिक साक्ष्य के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, उसके द्वारा ये पुस्तक प्रकट हुई है, भगवान की पुस्तक है। स्किलफुल पेन मैन अनसीन, यानी वास्तव में हाथ उनका है, लेकिन हम लोग बाहर से अगर देखेंगे तो श्री अरविंद का हाथ है, तो वही अवतार के रूप में। हिज स्विफ्ट इंट्यूटिव कैलीग्राफी, अर्थ फॉर्म्स वेयर मेड हिज डिवाइन डॉक्यूमेंट। तो ये पूरी जो सृष्टि है उसके अंदर जो सत्य छिपा है, तो ये वो वेद नहीं है जो किताबों में है, वो तो है ही, उसमें किताबों में जो है वेद जो हम लोगों को मिलता है, वो वास्तव में धरती के अंदर जो ज्ञान है, जो सत्य है छिपा हुआ है, उसी को ऋषियों ने अपने हृदय में प्रकट किया, अपनी मन की चेतना की उच्च शिखरों में मंत्र के रूप में उन्होंने उसे प्राप्त किया, और फिर उन्होंने उसके माध्यम से डिवाइन डॉक्यूमेंट यानी वेदों के रूप में उसको प्रकट किया। लेकिन इसका जो ओरिजिनल वेद है वो कहाँ छिपा है, वो धरती के कण-कण में व्याप्त है। तो दी यहाँ पर अर्थ फॉर्म्स वेयर मेड द डिवाइन हिज डिवाइन डॉक्यूमेंट्स द विजडम एम्बॉडीड माइंड कुड नॉट रिवील इन कॉन्शियंस चेस्ड फ्रॉम द वर्ल्ड्स वॉइसलेस ब्रेस्ट। सो वह सत्य है इसमें जो मन के परे है, मन जो एम्बॉडीड माइंड है वो उसको नहीं ग्रहण कर सकता। तो ये एक प्रकार से श्री अरविंद का प्रसाद है हम सबके लिए। और इसका प्रभाव क्या है, इनकॉन्शियंस चेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड्स वॉइसलेस ब्रेस्ट, यानी सावित्री को अगर हम पूरा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, उसके अंदर डूबते हैं, तो सच ये है कि कोई भी ऐसा सत्य नहीं है संसार में, मूलभूत सत्य की बात हो रही है, जो छिपा रह जाएगा। तो इनकॉन्शियंट का कहीं पर भी छाप है, कहीं पर भी अज्ञान की छाप है, वो सब कुछ हट जाता है, और सारा सत्य जो सृष्टि के अंदर व्याप्त है वो सब अपने आप स्वतः ही रिवील होने लगता है। ट्रांसफिगर्ड वेयर द फिक्स्ड स्कीम्स ऑफ रीजनिंग थॉट। सावित्री एक लॉजिकल एनालिसिस नहीं है कि ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं आर्ग्यूमेंट के द्वारा। सावित्री अपने आप में एक सत्य है जो प्रकट हो रहा है, और उसको हमको रिसीव करना होता है। तो ट्रांसफिगर्ड वेयर द फिक्स्ड स्कीम्स ऑफ रीजनिंग थॉट अराउजिंग कॉन्शियसनेस इन थिंग्स इनर्ट। ये भी इसका प्रभाव है कि जब हम सावित्री को ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, तो इसका एक जो प्रभाव होता है, एक तो हम लोगों ने प्रभाव की इनकॉन्शियंस का पर्दा हट जाता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि निश्चेतना के अंदर भी, जड़ तत्व के अंदर भी उसका प्रभाव, उसके अंदर चेतना अवेकन होने लगती है। जड़ तत्व के अंदर चेतना छिपी है ये तो ऋषि बताते हैं, लेकिन उसको कैसे जगाया जाए, एक तो है वो क्रम विकास के माध्यम से उत्तर उत्तर होती है, लेकिन सावित्री के पढ़ने माध्यम से, ग्रहण करने माध्यम से ये चेतना जो छिपी है जड़ तत्व के अंदर वो धीरे धीरे अवेकन होने लगती है। यानी इसका डायरेक्ट जो प्रभाव है वो हमारे शरीर के ऊपर होता है, शरीर की कोशिकाओं, जड़ तत्व से जो कुछ बना है उस सब के ऊपर होता है। इसलिए माँ कहती हैं कि यदि हम सावित्री को केवल रसपान करें तो ये हमको ले जाएगी चेतना की उच्चतम शिखरों तक, यहाँ तक कि रूपांतरण तक, बिना किसी गुरु की सहायता के। आगे लिखते हैं, ही इम्पोज्ड अपॉन डम्ब डार्क एटम एंड डम्ब मास द डायमंड स्क्रिप्ट ऑफ द इम्पेरिशेबल। अब यहां हम देखते हैं कि ये शब्द आता है कि सावित्री के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि इम्पोज करती है। सावित्री के साथ ये नहीं है कि हम खुले हैं या हम बंद हैं या हम रेजिस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर वो शक्ति है जो अपने आप को इम्पोज करती है किस चीज के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर, द डायमंड स्क्रिप्ट ऑफ द इम्पेरिशेबल। अब शेरविन ने डायमंड वर्ड यहाँ यूज किया है, डायमंड है अतिमानस के लिए जो हीरा, इसको अगर हम बनाएं इसको हेक्सागोनल, जो हम कहीं कहीं सीमा शेरविंद के जॉइंट सिंबल में भी देखते हैं, तो वास्तव में इट इज़ दी मदर्स लाइट एट इट्स मोस्ट इंटेंस, डायमंड का जो अर्थ दिया है शेरविंद ने, तो सबसे अधिक इंटेंसिटी का, वही सत्य अलग अलग ढंग से प्रकट किया गया है, लेकिन जो सबसे अधिक इंटेंसिटी से उसको प्रकट किया है शेरविंद ने, वो सावित्री में किया है। सो डायमंड स्क्रिप्ट ऑफ द इम्पेरिशेबल, यानी ये सत्य सदा सदा रहेगा, ये एक सामयिक सत्य नहीं है, काल की गति के अनुसार जैसे जैसे समय बदलेगा तो भी ये सत्य एप्लीकेबल रहेगा। और उसका कारण बहुत सिंपल है कि ये इसमें जो कहानी है, इसमें जो सत्य प्रकट किया है श्री अरविंद ने, वो केवल ये एक युग के एक विशेष प्रयोजन से नहीं है, इसमें भविष्य का भी दर्शन है। और वह जो भविष्य का दर्शन है, उस भविष्य के आने के बाद वास्तव में किसी स्क्रिप्चर की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो हमारे हृदय के अंदर वेद छिपे हैं वो खुल जाएंगे, वो जाग जाएंगे, और फिर हमको किसी स्क्रिप्चर की बाहर से आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि सावित्री संसार के स्क्रिप्चर जो हैं, ग्रंथ हैं, उसमें यह अंतिम ग्रंथ है। तो अगर हम इसको वेदों से जोड़ें तो वेद यदि आदि ग्रंथ हैं तो सावित्री अंतिम ग्रंथ हैं, क्योंकि जब सावित्री का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब किसी और नए ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहेगी। माता जी एक जगह बताती हैं, जब उनसे अवतार के बारे में पूछा गया तो माँ कहती हैं कि आई हैड ऑलवेज हर्ड, अब वो कहाँ पे उन्होंने सुना, निश्चित है कि उन्होंने किसी पुस्तक में तो नहीं पढ़ा है और हर्ड किसी और से तो नहीं सुना होगा, तो आई हैव ऑलवेज हर्ड दैट शूरबिंदो इज़ द लास्ट अवतार। उसके आगे वो लिखती हैं, ऐड करती हैं, लास्ट अवतार इन ए ह्यूमन बॉडी, आफ्टर दैट वी शैल सी। तो मानव रूप में अंतिम अवतार हैं और स्वाभाविक है कि इसके आगे क्या होना है वो एक सुपरामेंटल जगत का खेल है, तो किसी भी स्क्रिप्चर की, ग्रंथ की उसके आगे आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक वर्णन जो सावित्री का यहाँ आता है वो ये है कि द डायमंड स्क्रिप्ट ऑफ द इम्पेरिशेबल, और भी कुछ वर्णन आते हैं, इंस्क्राइब्ड ऑन द डिम हार्ट ऑफ फॉलन थिंग्स। डिम हार्ट क्या है, वह जो सुप्त अवस्था में हमारे अंदर जो चैत्य सत्ता का एक कोर है, हर चीज के अंदर है, और उसके अंदर हम सब के अंदर जो ये चैत्य सत्ता का कोर है, स्पार्क है भगवान का, जो अभी एक सुप्त अवस्था में है, उसको जगाने का कार्य भी सावित्री करती हैं। ए पेन सॉन्ग ऑफ द फ्री इन्फिनिटी, यानी आप इसको किसी छंद ताल लय में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि ये अनंत की एक 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 फ्रीडम, एक फ्री वर्स में है। एंड द नेम फाउंडेशन ऑफ इटर्निटी, तो जो नाम है, जो भगवान का जो प्रथम नाद है, वह स्वर, वह भी सावित्री के अंदर मंत्र के रूप में कैप्चर्ड है। इन द इडियोग्राफ्स ऑफ द इनएफेबल द लिरिक ऑफ द लव दैट वेट्स थ्रू टाइम एंड द मिस्टिक वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ ब्लिस एंड द मैसेज ऑफ द सुपर कॉन्शियंट फायर. तो इसमें ये तीन और वर्णन हम लोग पढ़ते हैं. लिरिक ऑफ लव, कौन सा प्रेम? वो प्रेम जो अनंत काल से आगे तक आने वाले काल की अंतिम छोर तक वो हमारी प्रतीक्षा करता है. और स्पष्ट ही है कि ये दिव्य जननी डिवाइन मदर का प्रेम है. और तब तक हम लोग सारे जो क्षणिक प्रेम है, क्षणिक आकर्षण है, उनसे निकलकर अंत में हम उस प्रेम की ओर जाते हैं जो सावित्री के अंदर शेरविन ने प्रकट किया है. और एंड द मिस्टिक वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ ब्लिस, ये संसार आनंद हेतु बना है, लेकिन हम लोग कहीं भी संसार में अगर अनुभव करते हैं तो सुख दुख और न्यूट्रलिटी इनडिफरेंस, ये तीन चीज हम लोग अनुभव करते हैं. लेकिन इन सब के पीछे एक अमृत धारा की तरह कहीं ना कहीं आनंद, एक अपरिवर्तनीय आनंद चल रहा है. और उस पंदन को भी सावित्री के अंदर प्रकट किया गया है. एंड द मैसेज ऑफ द सुपर कॉन्शियंट फायर, यानी प्रज्ञा जो अनमैनिफेस्ट है, जो पूर्ण प्रज्ञा है, उसके अंदर जो सत्य छिपा है वो यदि हमसे बात करे, हमें बताना चाहे. यानी अब तक हम लोग अपनी बात भगवान को बताते रहते हैं और अपनी समस्या बताते रहते हैं, अपना विजन जो है हम संसार को कैसे देखते हैं बताते रहते हैं. यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं अपनी तरफ की स्टोरी, उनकी तरफ की कहानी. तो ये सावित्री की का डिस्क्रिप्शन है. और एक जगह इसमें बहुत सुंदर वर्णन आता है सावित्री का, जो ये केवल एक पुस्तक नहीं है, ये भी हम लोग देखते हैं. अगर हम सावित्री को ध्यान से पढ़ें और इससे हमारा संबंध जुड़े, तो हम देखते हैं कि सावित्री एक पुस्तक नहीं है, सावित्री एक जीवंत सत्ता है. एक्चुअली मेरे साथ तो ये अनुभव बहुत बार होता है, मुझे लगता है जो पुस्तकें अपने आप में एक जागृत हो जाती हैं तो वो अपने आप में एक रियलिटी बन जाती हैं. और इसके कई अनुभव हैं, कई ऐसे लोगों के भी अनुभव हैं कि सावित्री अपने आप में एक लिविंग एम्बॉडीमेंट है. मतलब वो केवल एक पुस्तक नहीं है, केवल एक जागृत पुस्तक नहीं है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है. यानी शेरविंद ने इस पुस्तक में डिवाइन मदर की ही उसी सत्य को वाणी के माध्यम से, ये उनकी वांग्मय देह है, उसमें उन्होंने उसको प्रकट किया है. तो यहाँ पर सावित्री के विषय में जब सुप्रीम बताते हैं कि तुम कौन हो, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि यही सत्य वास्तव में ये हमारे जीवन में भी, ये सावित्री जो पुस्तक है उसमें भी ये स्पष्ट रूप से झलकता है, वही सत्य. तो हम उसको सावित्री द इनकारनेशन ऑफ द डिवाइन मदर, उन पर भी अप्लाई करता है, और यही सावित्री द बुक, उस पर भी अप्लाई करता है. तो यहां पर हम लोग पेज 703, ओ सावित्री, दाउ आर्ट माई स्पिरिट्स पावर, द रिवीलिंग वॉइस ऑफ माई इमॉर्टल वर्ड. अब देखिए ये दोनों पर अप्लाई करता है एक साथ. तो सावित्री क्या है? वो भगवान की ही शक्ति, शक्ति को इन्होंने माने, इसीलिए कहा है कि इसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मिंग पावर है. द रिवीलिंग वॉइस, उसके अंदर ज्ञान भी है. वो कौन सा ज्ञान है? जो स्वयं भगवान प्रकट करते हैं इस सृष्टि के अंदर. ऑफ माई इमॉर्टल वर्ड, द फेस ऑफ ट्रूथ अपॉन द रोड्स ऑफ टाइम, pointing to the souls of man, pointing to the souls of men, the roots to God. तो कहीं से भी अगर हम पढ़ लें सावित्री को, कहीं से भी खोलें, कहीं भी हमको आगे मार्ग देखने की, जानने की अगर हमारे अंदर अभीप्सा हो, ऑफकोर्स लिविंग गाइडेंस तो हृदय के अंदर आता है, लेकिन हम सावित्री के माध्यम से वही गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा रोड मैप है, पूरा रूट है. और किसी भी अवस्था में, अंधकार से अंधकार में या अवस्था में, अलग अलग चेतना के स्तरों पर, इंटरमीडिएट जोन में, मन की ऊंचाइयों पे, हृदय की गहराइयों में, प्राण तत्व के अंदर, शरीर के अंदर, सारे जो सत्य छिपे हैं, जहाँ पर भी हमारी चेतना घूम रही हो, वहाँ से आगे का सारा मैप सावित्री के अंदर प्रकट किया गया है. पॉइंटिंग टू द सोल्स ऑफ मैन, द रूट्स टू गॉड, वाइल द डिम लाइट From the veiled spirit's peak, falls upon nature, matter's stark inconscient sleep, as if a pale moonbeam on a dense glade, and mind in a half light moves amid half truths, and the human heart knows only human love, and life is a stumbling and imperfect force, and the body counts out its precarious days, you shall be born into man's dubious hours. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, यू शैल बी बॉर्न. अब इसको कई तरह से कि ये क्या कहने का अर्थ है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि किसी एक बार की बात नहीं हो रही है. जब जब मनुष्य कठिनाई में होगा, जब जब वो स्टम्बल करेगा, तब तक किसी न किसी रूप में सावित्री उसके जीवन में आएगी और प्रकट होगी. अब ये बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास, ऐसे व्यक्ति जो मृत्यु की शैया पर थे, ऐसे व्यक्ति जो एकदम डिप्रेस्ड अवस्था में थे. इसीलिए माँ कहती हैं, अगर तुम बहुत डिप्रेशन में हो, जस्ट पिकअप सावित्री एंड ओपन एनी लाइन. तो बॉर्न यहाँ उस सेंस में है, ये केवल बर्थ वैसे नहीं है कि मानव शरीर धारण करके सावित्री प्रकट होंगी, ये उस सेंस में है कि ये पुस्तक व्यक्ति के सामने प्रकट होगी, नए रूप में अपने आप को रिवील करेगी. बर्थ उस सेंस में है कि जैसे जैसे जब जब हमारे जीवन में वैसे अवसर होंगे जिनको युग संधि का या जीवन में ट्रांजिशन के फेजेस हैं, जब हम किंग कर्तव्य विमूढ़ होंगे, तब तक सावित्री हमारे अंदर एक नया संदेश लेकर के जन्म लेगी, प्रकट होगी. तो ये सावित्री की बहुत सुंदर इसमें वर्णन है. अब इसको डायमंड स्क्रिप्ट कहा है, इन द सेंस कि ये जो उच्चतम सत्य है वो इसमें प्रकट किया गया है. तो स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न उठता है, कई लोग प्रश्न करते हैं, शायद हम लोगों की ऑडियंस के लिए ये प्रश्न उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब सावित्री का रिस्पॉन्स बहुत समय से करते रहे हैं, तो इस बात से परिचित हैं. लेकिन कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या है नया जो शेयरविंद हम लोगों को बता रहे हैं. तो सच ये है कि आप बाकी सब पुस्तकों को एक तरफ रख दें, केवल सावित्री हम पढ़ेंगे, तो बहुत सारी सत्य इसमें नए हैं जो शेयरविंद प्रकट कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें वो इसमें प्रकट होंगी और उसको हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको मनन कर सकते हैं और वो रियलाइज़ कर सकते हैं. तो ये इसकी तो एक पूरी लिस्ट बन सकती है, तो मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें सीक्रेट नॉलेज में फॉर एग्जांपल ये श्री अरविंद बताते हैं कि धरती के अंदर एक योग चल रहा है, पूरे क्रम विकास कैसे होता है, वो वास्तव में भगवान उसके अंदर योग कर रहे हैं, मनुष्य की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ तक जाएगी, जीवात्मा से संबंधित ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के परे क्या है, मनुष्य क्या है और मनुष्य के आगे क्या है, ये सारे के सारे सत्य, अनेकों सत्य, युग परिवर्तन कब होगा, जब अंधकार गहरा होगा, दस शल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन, ये सब कुछ इसके अंदर, देह के रूपांतरण की बात, सब कुछ सावित्री के अंदर है. और सच है कि ये एक एक विषय अपने आप में एक विशाल सब्जेक्ट है. तो ये मेरे लिए कठिन हो रहा था कि मैं इस पुस्तक से क्या पिकअप करूँ, जो डायमंड स्क्रिप्ट ऑफ द इम्परिशेबल नाम तो दे दिया, लेकिन अब इसमें तो सभी कुछ डायमंड स्क्रिप्ट है, तो इसमें से क्या पिकअप करूं जो इसका अनूठा है, अनोखा है, जो सब जगह है. तो मृत्यु के साथ संवाद में जो अंत में सावित्री रिवील करती हैं, इसको हम इस तरह से लें कि जब श्रीमद् भगवद गीता होती है तो उसमें बहुत सारे महान सत्य दिए गए हैं, लेकिन अंत में जो उसका लास्ट वर्ड है, सुप्रीम वर्ड है. तो श्रीमद् भगवत गीता का सुप्रीम वर्ड क्या है? सुप्रीम वर्ड श्री अरविंद स्वयं बताते हैं, भगवत गीता स्वयं कहती है कि अब मेरा परम जो वाक है, वचन है, वो तुम सुनो कि जो मेरी तरफ मुड़ते हैं पूरी तरह, मैं उनको कभी परित्याग नहीं करता, उनका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी नहीं गिरते हैं, आगे सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकम शरणम रजा. और फिर अंत में यह भी आता है श्रीमद् भगवत गीता में, जहां नर है, जहां नारायण है, वहीं विजय है. अब ये परम वाक है, यानी आप गीता की सारी जो सत्य हैं वो एक जगह रखते हैं, लेकिन अंत में ये दिखाई देता है कि ये श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि इसका महात्म क्या है, इसका सत्य क्या है. तो सावित्री में भी अंत में सब कुछ रिवील करते करते अंत में श्री अरविंद सावित्री के माध्यम से जो मृत्यु को रिवील करते हैं, मृत्यु के अंदर जब अंतिम अंधकार की जो छाया है वह कैसे जाती है, वो कौन सा सत्य है जो श्री अरविंद ने प्राप्त किया था, जो वो बताना चाह रहे हैं हम सबको, तो वह हम सावित्री में पाते हैं. और मुझे लगा कि हमको वही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ों का समावेश है. तो वी विल रीड ए लिटिल बिट ऑफ दैट. और ये आता है द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल. अब ये बहुत लंबा है कैंटो, इसी में सारा रिवेलेशन है, लेकिन इसमें जगह जगह से एक जो वो सत्य है वो 648 इस पेज पर श्री अरविंद बता रहे हैं. the world is not cut off from truth and God. तो पहला ये हम केवल इस सत्य को पकड़ के चले, यानी ना केवल भगवान छिपे हुए हैं इस संसार के भीतर, किंतु वह इससे जुड़े हुए हैं। दोनों में एक अंतर है, एक है कि साक्षी भाव से वो सारी सृष्टि में व्याप्त हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं मतलब उनका एक लिंक है, वही लिंक सुपर माइंड है, वो लिंक हैं इस संसार के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये लिंक हम लोगों को तीन जगह मिलते हैं, एक तो वो छिपे हुए निश्चेतना के अंदर जहाँ से वो प्रेशर डाल रहे हैं सब चीज़ों को बाहर प्रकट होने के लिए, दूसरा लिंक है सुपर माइंड में जो हम देखते हैं कि वहाँ लिंक है जो परा प्रकृति और अपरा दोनों के बीच, दोनों परार्थ और अपरार्थ के बीच में जो लिंक है वो सुपर माइंड है, और तीसरा है जो हमारे हृदय के अंदर चैत्य सत्ता, जिसको सीमा बताती हैं कि इट इज़ द लिंक ज्वाइनिंग ये जगत को भगवान से जुड़ने का जो लिंक है। तो ये संसार भगवान के से या सत्य से कटा हुआ नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये इल्यूजन नहीं है इसका अर्थ है। तो फिर ये क्या है, माँ बताती हैं कि एक डिस्टॉर्शन है, यानी ये ईश्वर से ही निकला है लेकिन उस लिंक और इस संसार के बाहरी प्रकटन के बीच में बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी परतें हैं जिनके थ्रू वो धीरे धीरे डिस्टॉर्ट करता हुआ आता है, और जो हम बाहर जो देखते हैं अपने जीवन में वो वास्तव में वो एक डिस्टॉर्टेड, वो एक विकृत सी छवि है, और चूंकि ये विकृत है इसको सुकृति में बदला जा सकता है। यदि ये इल्यूजन है, केवल एक भ्रम है, केवल एक छाया है, तो हम इसको नहीं बदल सकते हैं। तो ये एक मूलभूत अंतर है कि एक जो ट्रेडिशनल वेदांत है उसमें ये हमें बताया जाता है कि ये संसार जो है वो मात्र एक प्रतीति है, वो एक इल्यूजन है। अब उस इल्यूजन और सत्य के बीच में संबंधों को लेकर के अलग अलग बात अलग अलग तरह से देखा गया है, लेकिन अंत में ये एक इल्यूजन है। किंतु यहाँ पर अधिक से अधिक ये कहा गया कि मानव आत्मा की एक अपनी इंडिविजुअल सोल की रियलिटी है और भगवान के साथ वो चाहे तो इटर्नली खेल सकती है, लेकिन इससे संसार का स्वरूप नहीं बदलता है। तो यहाँ पर संसार और जो ये जगत है ये भगवान के साथ कनेक्टेड है, और अगर हम उस लिंक को फिर से अपने जीवन में उतारने लगे, अभी हम डिसकनेक्टेड लाइफ लीड करें, अलग पृथकत्व के उसमें जी रहे हैं, किंतु यदि हम इससे फिर से रिकनेक्ट हो जाएं, तो फिर ये संसार में जो डिस्टॉर्शन है, जो विकृति है हमारे चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो या संसार के जीवन में, समष्टि के जीवन में हो, उसको सही किया जा सकता है। तो ये एक परम सत्य, इन वेन दाउ हैज डग द डार्क अनब्रिजेबल गल्फ, इन वेन दाउ हैज बिल्ड द ब्लाइंड एंड डोरलेस वॉल। तो मृत्यु क्या है, यहां पर मृत्यु एक प्रकार से वो अंधकार है जो सब जगह पर, जैसे कल चंद्र ग्रहण था, तो अगर कोई चंद्रमा पर होगा तो वो सूर्य को नहीं देख पाएगा, या सूर्य ग्रहण होता है तो हम नहीं देख पाते क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है। तो ये जो गल्फ है मनुष्य, ये संसार और भगवान के बीच में, वो इसलिए है क्योंकि मृत्यु ने, जहां तक मृत्यु की पकड़ है वहां तक इसने कहीं ना कहीं एक छाया के रूप में ढका हुआ है सत्य को, इसलिए हम सत्य और संसार के बीच में लिंक नहीं ढूंढ पाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि श्री अरविंद जो अतिमानस सुपर माइंड इसके खोज में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो इसी रिकनसाइलिंग सत्य को ढूंढ रहे हैं जो संसार और भगवान के बीच में हो, कि कोई तो इंटरमीडिएट लिंक होगा। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि भगवान ने एको हम बहुश्याम, उनके अंदर सृष्टि का संकल्प जागृत हुआ और सृष्टि प्रारंभ हो गई, लेकिन कैसे प्रारंभ हुई, कोई तो सत्य होगा जिसने उनके अंदर छिपी संभावनाओं को पहले धारण किया, धारण करने के बाद उनको एक ऑर्डर के रूप में, एक रितचित के विधान के स्वरूप प्रकट किया, नहीं तो चीज़ें रैंडम होती। तो ये जो सत्य है, जो लिंक है, जो उस एक और अनेकत्व के बीच का लिंक है, वह सुपर माइंड है। तो ये लिंक एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये लिंक की जो पहली आभा है वो ओवर माइंड में मिलती है, इसीलिए श्री अरविंद के योग में ओवर माइंड का इतना महत्व, कम से कम उनकी व्यक्तिगत यात्रा में। और वो ये कहते हैं कि जब कोई बड़े रेयर जो लोग पहुँचे भी ओवर माइंड तक, वो इतना ब्रिलियंट लिड है कि उनको ऐसा लगा कि इसके पार जो आभा आ रही है, वास्तव में हम सत्य में पहुंच गए और उसको क्रॉस करके वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसके नीचे इंट्यूटिव माइंड पर भी हमको वो लिंक कहीं ना कहीं अंतर्भाष से हम ये महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो लिंक हमको मिलता नहीं है। इसीलिए जो लोग उन चेतना की इवन ओवर माइंड के लोअर रेंजेस में जो लोग वहाँ तक ऊपर उठे, वही संसार और भगवान के बीच में जो कड़ी है उसको नहीं ढूंढ पाए, और इसी कारण उन्होंने इस संसार को माया डिक्लेयर कर दिया। तो ये तो एक सत्य श्री अरविंद इसमें सावित्री में बताते हैं। फिर आगे डिवाइन मदर, कई बार ये भी कहा जाता है फ्रीडम की बात, कि नहीं ठीक है ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सापेक्ष टाइम स्पेस के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, वास्तव में तो हमको अंत में तो मोक्ष ही प्राप्त करना है। तो यहाँ फ्रीडम का बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है, जब हम अतिमानस दृष्टिकोण से देखते हैं, और बहुत लॉजिकल है ये। 653 पहले इसका वर्णन है कि ये संसार क्या है, इसमें ओमिनस मास्क्स हैं, किंतु क्यों इस देश काल की सीमा में हमारी जीवात्मा उतरी है, और उसके साथ साथ कोई तो सत्य है जिसको हम सब ने सत्यवान के रूप में धारण किया हुआ है। Why came it down into the mortal space? A charge he gave to his high spirit in man and wrote a hidden decree on nature's tops. तो कहीं ना कहीं कोई सत्य है जो हम सब धारण किए हैं, जिसे हम अनभिज्ञ हैं, और वो सत्य केवल मोक्ष का नहीं है। मोक्ष तो एक यूनिवर्सल चीज हम लोगों ने कह दी कि एक निर्वाण की अवस्था है, लेकिन यहाँ व्यक्ति की बात कर रहे हैं। फ्रीडम इज दिस विद एवर सीटेड सोल, लार्ज इन लाइफ्स लिमिट्स, स्ट्रांग इन मैटर्स नॉट्स, बिल्डिंग ग्रेट स्टफ ऑफ एक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड्स, टू मेक फाइन विजडम फ्रॉम कोर्स स्कैटर्ड स्ट्रैंड्स, एंड लव एंड ब्यूटी आउट ऑफ वार एंड नाइट, द वेजर वंडरफुल द गेम डिवाइन। तो ये एक खेल है, यहाँ पर वो ये बता रहे हैं लीला का एस्पेक्ट, कि ये संसार वास्तव में इस खेल है। ये और बात है कि हम लोग इसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। सीरियसली लेने के बजाय हमको इस खेल में खेल की तरह खेलना चाहिए, और इसका अर्थ ये कि रूल्स ऑफ द गेम हमको पता होने चाहिए। तो कई आधी जिंदगी तो इसी को जानने में निकल जाती है। माँ कहती हैं 60 साल की उम्र का जब व्यक्ति होता है तब उसको पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है, और ये तो माँ ने बहुत जेनरस कहा है। सत्य तो ये है कि कई लोग चले जाते हैं और उनको जीवन का सत्य नहीं पता होता, लेकिन कम से कम हमको रूल्स ऑफ द गेम पता चल जाते हैं अगर हम बड़े कॉन्शियसली जीवन जी रहे हैं, कम से कम योगनिष्ठ व्यक्ति को तो निश्चित रूप से। और वो रूल्स ऑफ द गेम जो पता चल जाते हैं तो इवन ये कैरी ऑन करता है, और थोड़ा सा भी जो खेल होता है वो अद्भुत खेल होता है, बिकॉज नाउ वी आर नॉट द फुटबॉल बट द प्लेयर। तो मैं एक जगह बताती भी हैं, द डिफरेंस इज बिटवीन नोइंग द प्ले एंड प्लेइंग इट अनकॉन्शियसली। तो जब रूल हमें पता चल जाते हैं इस खेल के, तो ये खेल बहुत निराला हो जाता है, तब हम इस खेल से भागने की चेष्टा नहीं करते हैं, बल्कि उसको एक आनंद वर्धन का एक प्रयोग देखते हैं। तो फिर आगे, वॉट लिबर्टी हैज द सोल विच फील्स नॉट फ्री अनलेस स्ट्रिप्ड बेयर एंड कैनॉट किस द बॉन्ड्स, द लवर वाइंड्स अराउंड हिज प्लेमेट्स लिम्स, Choosing his tyranny, crushed in his embrace. तो एक है मोक्ष का ये अर्थ, जो ट्रेडिशनली आजकल हम लोग ये समझते हैं कि संसार से परे चले जाना। संसार एक झमेला है, एक मेला है, एक भ्रम है, इससे आप बाहर निकल जाएंगे तो मोक्ष है। लेकिन एक दूसरा है कि इस संसार में ईश्वर भी हैं और जीवात्मा जो उसी सत्य को धारण किए हैं। तो जीवात्मा और ईश्वर के बीच यह खेल, और ये संसार के अंदर, यानी आप बाहर से अगर देखा जाए तो आप बॉन्ड्स में हैं, लिमिट्स में हैं, लेकिन आप अंदर फ्री हो, क्योंकि ये फ्रीडम किसी बाहरी कंडीशन पर नहीं एग्जिस्ट करती है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये एक लॉजिकल चीज़ भी है कि वैसी फ्रीडम, अगर सच में लिबर्टी एक अवस्था है भगवान की, तो वो फ्रीडम तो अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगर कोई किसी भी फ्रीडम में हम कंडीशंस डालते हैं कि ये करेंगे तो हम फ्री नहीं हैं, इस अवस्था में फ्री नहीं हैं, तो फिर तो वो फ्रीडम कंडीशनल फ्रीडम हुई। लेकिन भगवान तो सारे संसार में हैं और सारे संसार में वो कार्यरत हैं, खेल रहे हैं, लेकिन वो तो कभी नहीं कहते कि मैं बंद गया, यदि वह अगर ऐसा भाव उनके अंदर आ जाए कि मैं बंध गया तो सृष्टि आगे नहीं चलेगी, तो यहां पर उस फ्रीडम की वो बात कर रहे हैं। अब आगे और आगे सावित्री रिवील करती जाती हैं एक से एक सत्य को, और अंत में पेज 660 पर एक सुपर माइंड का बहुत ही अद्भुत वर्णन है, जहां श्री अरविंद बताते हैं कि पार्टिंग ऑफ द लीड। तो मर्त लोक कहां तक है? ओवर माइंड के नीचे जितने भी लोक हैं, वास्तव में कहीं ना कहीं उनके अंदर अज्ञान का एक हल्का सा, अज्ञान नहीं कह सकते मूलभूत रूप से इंट्यूटिव माइंड के अंदर, लेकिन उसके अंदर कुछ है जो प्रकट नहीं है। तो उस सेंस में उसमें संपूर्ण सत्य नहीं है, तो उस सेंस में उसके अंदर कहीं ना कहीं अज्ञान की संभावना है, और यह अज्ञान की संभावना ओवर माइंड के अंदर भी है। श्री अरविंद कहते हैं कि हालांकि ओवर माइंड के देवताओं के अंदर अज्ञान नहीं है, लेकिन संभावना है, क्योंकि जहां भी संपूर्ण सत्य नहीं है वहां कोई ना कोई छिद्र, कोई ना कोई ऐसा स्थान जरूर है जिसके माध्यम से अज्ञान प्रवेश कर सकता है। और यही कारण था कि श्री अरविंद ने ओवर माइंड क्रिएशन को डिसॉल्व करने की बात की। तो अब यहां पर मां बता रही हैं कि सुपर माइंड वास्तव में क्या है और ओवर माइंड का जो अंतिम वर्णन है, जहां स्पेस और टाइम को एक सिंगल लुक में देखा जाता है, पेज 660 पर है, अंतिम तीन पंक्तियां। ऑल टाइम इज वन बॉडी, स्पेस अ सिंगल लुक, देयर इज द गॉडहेड्स यूनिवर्सल गेज एंड देयर द बाउंड्रीज ऑफ इमॉर्टल माइंड। तो वो एक ऐसा स्थल है जहां पे हम सारी चीजें प्री डिटरमाइंड हैं, या माँ बल्कि ऐसे कहते हैं कि प्री डिटरमाइंड की जगह प्री एग्जिस्ट करती, यानी हम सब का जो क्या थे, हम क्या हैं और क्या होना है, ये सब वहाँ एग्जिस्ट करता। और इसीलिए हम लोग कई बार भगवान की लीला को नहीं समझ पाते, क्योंकि कई बार हम लोगों को उस व्यक्ति का एक छोटा सा भाग इस समय का तत्कालिक भाग दिखाई देता है। कई लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि श्री कृष्ण कौन है और उन्होंने अर्जुन को क्यों चुना। ये अभी तक ये कई बार विवाद होता है कि उन्होंने अर्जुन को क्यों चुना गीता देने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण रिवील करते हैं क्योंकि उनके सामने अर्जुन का पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और भविष्य भी है। तो जो अतिमानसिक दर्शन है, उस विजन में सब चीज़ों का, ये त्रिकाल दृष्टि है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। तो स्पेस बिकम्स ए सिंगल लुक एंड टाइम बिकम्स ए सिंगल बॉडी। और यहां पर द लाइन दैट पार्ट्स एंड जॉइंस द हेमिस्फीयर्स क्लोजेस इन ऑन द लेबर ऑफ द गॉड्स। कितनी अद्भुत पंक्ति है, यहां पर देवताओं का जो लेबर है वो भी बंद हो जाता है। क्यों ये बंद हो जाता है? क्योंकि उसके आगे वे सारे देवता अपने देवत्व को धारण करते हुए उस एक दिव्य सत्य के अंदर समाहित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और तब ये पता चलता है कि उनके जो लेबर, जो देवताओं का जो कर्म है, उसकी प्रेरणा भी और शक्ति भी केवल और केवल भगवान दे रहे थे, और ये हम लोग गीता में भी पाते हैं। फेंसिंग इटर्निटी फ्रॉम द टॉयल ऑफ टाइम इनर ग्लोरियस किंगडम ऑफ इटर्नल लाइट ऑल रूलर, यानी सुपरमाइंड का एक डिस्क्रिप्शन है, ही इज द रूलर द किंग रूल्ड बाय नन द ट्रूथ सुप्रीम, यानी केवल एक ब्रह्म, इम्यूटेबल ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, यही अंतिम सत्य नहीं है। शर और अक्षर के परे एक सत्य है जो इस संसार का लॉर्ड है, ईश्वर है। अब इसकी हम लोग ईशुपनिषद में भी पढ़ते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, और श्री अरविंद लॉर्ड के ऊपर, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसके ऊपर काफ़ी कुछ इसमें बताते हैं। तो इस संसार में शर और अक्षर के परे, और यहाँ वो स्पष्ट करते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम है वो एक सगुण ब्रह्म नहीं है, वो कोई पर्सनल डेटी नहीं है, किंतु वो बीइंग है जो भगवान का की सत्ता है, जो सच्चिदानंद है स्वयं, जो इस संसार में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। ऑल रूलर रूल्ड बाय नन द ट्रुथ सुप्रीम ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट एंड अलोन इन ए गोल्डन कंट्री कीप्स हर मेजरलेस हाउस। अब यहां पर उन्होंने उसको फेमिनाइन फॉर्म दे दिया, क्यों? क्योंकि ओमनीपोटेंस और ओमनीसिएंस है, वो डिवाइन की शक्ति ही है, तो शक्ति स्वरूपा, और उन्होंने हर चीज का सत्य अपने अंदर धारण किया हुआ है. मेजरलेस हाउस, उसकी कोई दीवार नहीं है, कोई छत नहीं है, वो स्पेस के परे है और स्पेस उसमें प्रकट होता है. तो मेजरलेस हाउस इन इट्स कॉरिडोर शी हियर्स द ट्रेड दैट कम्स. अब यहाँ देखिए देश का वर्णन, स्पेस का वर्णन कैसा है, गोल्डन कंट्री मेजरलेस हाउस. काल का कैसा वर्णन है, कॉरिडोर, क्योंकि कॉरिडोर में क्या होती है, पदचाप सुनाई पड़ती है. जब भी कभी आप कहीं बैठे हैं तो पहले कहाँ पदचाप सुनाई पड़ती है, आहट, वो कॉरिडोर में सुनाई पड़ती है. तो यहाँ काल जो आ रहा है, भविष्य, उसकी गति यहाँ पर सुनाई पड़ती है. तो कॉरिडोर, उसके बाद या यहाँ से जो काल लेकर के जा रहा है तो वहाँ पर गति सुनाई पड़ती है. इन इट्स कॉरिडोर शी हियर्स द ट्रेड दैट कम्स आउट ऑफ द अनमैनिफेस्ट नेवर टू रिटर्न. काल की गति में वो प्रवाहित हो जाता है और फिर वो वापस नहीं आता है. टिल द अननोन इज नोन एंड सीन बाय मैन अबव द स्ट्रेच एंड ब्लेज ऑफ कॉस्मिक साइट, अबव द साइलेंस ऑफ द वर्डलेस थॉट, फॉर्मलेस क्रिएटर ऑफ इमॉर्टल फॉर्म्स, नेमलेस इन वेस्टिट्यूड विद द नेम डिवाइन. तो अक्सर इन दोनों में जो भेद है कि नहीं, वास्तव में भगवान का कोई नाम है, वो अनाम है, वो अरूप है. तो सुपर माइंड वो है जहाँ वो दोनों हैं, अनाम और अरूप भी हैं. और वहीं पर हम देखते हैं कि नाम और रूप, नाम यानी उनकी जो क्वालिटी है, नाम का जो ओरिजिनल सेंस है वो ये है कि प्रत्येक नाम भगवान की किसी न किसी गुण को, किसी क्वालिटी को प्रकट करता है. और ओरिजिनल सेंस नाम का यही था कि नाम जब रखा जाता था तो ईश्वर की किसी क्वालिटी को प्रकट करने के लिए. तो यहाँ पर जो अरूप है वो रूप धारण करने का जो पहला चरण है वहाँ प्रारंभ होता है, और यही जो अनाम है वही नाम यानी क्वालिटीज को धारण करता है. ट्रांसेंडिंग टाइम्स आर ट्रांसेंडिंग टाइमलेसनेस, द माइटी मदर सिट्स इन ल्यूसेंट काम एंड होल्ड्स द इटर्नल चाइल्ड अपॉन हर नीज, अटेंडिंग द डे व्हेन ही शैल स्पीक टू फेट. कितनी सुंदर इमेज है, हम सब जानते हैं कि माता जी के साथ जो एक व्यवहार था लोगों का, कैसा व्यवहार था. माँ विशेष रूप से, माँ किसी को एम्ब्रेस नहीं कर रही हैं, माँ किसी को केवल दंडवत प्रणाम नहीं करवा रही हैं, माँ केवल दूर से प्रणाम, जिसकी जैसी इच्छा वो एक अलग बात है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक था जो हम बार बार सुनने में आता है हम लोगों के, कि लोग जाके माँ की गोद में अपना सिर रख देते थे. तो यह जो माँ की गोद में सिर रखना है, अभी भी आप देखें कि समाधि पर जाके लोग यही भाव से समाधि के ऊपर सिर रखते हैं. आप इसी चीज़ को अपने अंदर भी एक अपनी कल्पना के उसमें एक ध्यान के रूप में आप ध्यान कर सकते हैं. और शेरविंद ने यहाँ तक कहा, जब सहना दी ने कहा कि मुझे ध्यान करना नहीं आता, जब मैं बैठती हूँ तो मुझे ऐसा बस भाव आता है कि मैं माँ की गोद में अपने सिर को रखे हुए हूँ. और शेरविंद कहते हैं ये तो सबसे उत्तम ध्यान है. ये क्यों उत्तम ध्यान है, क्यों वो कह रहे हैं, क्योंकि यही हमारा वह सत्य है जिसको हमने विस्मृत कर दिया है. यहाँ तक विस्मृत कर दिया है कि हमको लगता है कि हमारी माँ है ही नहीं, यहाँ तक कि उनके ऊपर हम डाउट करते हैं, यहाँ तक कि हम अज्ञान को ही अपनी मदर समझते हैं, फॉल्सहुड को जननी समझने लगे हैं इस संसार का. लेकिन सत्य ये है, और वो सत्य सदैव है. यानी हमारी अंदर दो गति हैं हमारी जीवात्मा की, द्वासुपर्णा, एक जो यहाँ अज्ञान में है जिसको साइकिक चैत्य सत्ता के रूप में है, और एक जो पूर्ण ज्ञान में प्रकट होती है. दोनों एक साथ हैं. यानी एक और हम सभी अपने सेंट्रल बीइंग के रूप में, जीवात्मा का जो सेंट्रल बीइंग है जो पूरी तरह ये जानता है कि डिवाइन मदर कौन है और उनकी गोद में वो सिर रखे है. और इसीलिए जब माँ कहती है कि इस योग में कैसे पता चले कि आपने किसी को इनिशिएट कर दिया है, क्योंकि यहाँ तो बाहरी कोई मंत्र कोई दीक्षा नहीं है, तो माँ कहती है मैं जब किसी को कहती हूँ कि मैंने इनिशिएट कर दिया है, इसका अर्थ ये है कि मैंने उसको बता दिया है, रिवील कर दिया है, बता नहीं दिया, रिवील कर दिया है, प्रकट कर दिया है कि मैं कौन हूँ. तो ये अपने आप होता है. ये क्यों, क्योंकि एक शाश्वत सत्य है कि हम सब डिवाइन मदर के पोर्शन हैं. इसकी बात तो श्रीमद् भगवद गीता में भी है, परा प्रकृति जीव भूता. लेकिन इसके आगे की एक बात है कि वास्तव में हमारा माँ के साथ क्या संबंध है. हम उनकी गोद में सिर रखे हुए हैं, और गोद में सिर रखने का अर्थ ये है कि परम सुरक्षा भी है. इसका अर्थ है कि हमको वास्तव में जैसे जैसे हम जाते हैं माँ के करीब, वैसे वैसे हम सभी चिंताओं से मुक्त होने लगते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं. एक कहानी है कि एक महिला हैं जो अपने 4 साल के बच्चे को लेकर के जब आश्रम आई और माँ के दर्शन के लिए गई, तो बच्चा तो बच्चा है, तो वो तो चारों तरफ घूम रहा है, उछल रहा है, और ये उसको उसकी तरफ उनका ध्यान जा रहा है, कभी माँ की ओर कभी बच्चे की ओर, कि इसको चुप करो. अचानक माँ उससे कहती हैं, ही इज़ माई चाइल्ड ऑल्सो, वो मेरा भी बच्चा है, तुम इधर आओ. और शी कॉल्स हर और उसको पूरी तरह अपनी गोद में सिर रख देती हैं. तो अपना ये अनुभव मुझे बता रही थी, कहती उसके बाद तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा, मेरे अंदर ये भाव आ गया कि ये जो बच्चा है ये वास्तव में ये भी तो माँ की संतान है. तो अगर केवल इस सत्य को हम धारण करें कि हमारा जो ओरिजिनल सत्य है वो क्या है, वो सत्य ये है कि हमने माँ की गोद में अपना सिर रखा हुआ है, उसमें पूर्ण निश्चिंतता है, पूर्ण सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, पूर्ण निर्भयता है, और जो कुछ हमको चाहिए वो सब माँ हमें दे देंगी. यानी संबंध जो है माँ और बच्चे का कैसा होता है, वहाँ बच्चा ये नहीं कहता कि अपना मुंह नहीं छिपाता कि मैं शेमफुल फील कर रहा हूँ, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, नहीं, वो जो है जैसा है. बच्चे को आप देखेंगे कि बच्चे ने अगर कुछ गलत भी किया है, इवन मानवीय बच्चों में ये होता है, तो अगर छिपाने की चेष्टा कर रहा है अपनी फिजिकल मदर से, लेकिन एक टाइम आता है उसको पता चल जाता है कि मेरी माँ से छिपा नहीं है, तो क्या करता है, माँ के ही अंदर, माँ की ही साड़ी के पल्लू से अपने मुंह को ढक लेता है वो अपने आप को उन्हीं के अंदर. और फिर माँ मुस्कुराती है, जो उसको बताना है बताती है, डांटना है तो डांट भी देती है, लेकिन वापस उसको नई ऊर्जा दे करके संसार में भेजती है. तो यहाँ हमारी जो डिपेंडेंसी है माँ के ऊपर, श्री अरविंद इसको दिव्य जीवन में बड़े विस्तार से समझाते हैं. एक मॉडर्न टेंडेंसी कि नो आई डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, ओके डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, वो तो सत्य है. हालांकि डिपेंडेंस तो व्यक्ति है जो पूरा एक सन्यासी कपड़े खोल करके जंगल में रह रहा है, वो भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड कर रहा है. जो कहेगा कि मैं केवल फल फूल खाऊंगा, तो फल फूल कहाँ से आ रहे हैं, तो सूर्य रात्रि दिन रात के मिलन से, वर्षा से, ऋतुओं के परिवर्तन से, सब कुछ तो वो डिपेंडेंट है. तो यह जो फ्रीडम है, यहाँ फिर से उसकी बात हो रही है, फ्रीडम इज नॉट इंडिपेंडेंस इन दिस सेंस कि हम हर चीज से पृथक हो जाएं, यहाँ तक कि भगवान से भी हम पृथक हो जाएं, कुछ लोग इसको स्वतंत्रता समझते हैं. जो सुप्रीम फ्रीडम है कि हम पूरी तरह भगवान पर डिपेंड करते हैं, और जब हम उन पर डिपेंड करते हैं तो हम अपनी बेड़ियों में भी अपने आप को मुक्त फ्री महसूस करते हैं. तो ये सत्य है जो यहाँ प्रकट हो रहा है. द माइटी मदर सिट्स इन ल्यूसेंट काम एंड होल्ड्स द इटर्नल चाइल्ड अपॉन हर नीज अटेंडिंग द डे व्हेन ही शैल स्पीक टू फेट. तो एक दिन आएगा जब उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए स्क्रिप्ट तैयार की हुई है, लेकिन अभी वो जैसे बच्चा अगर सो जाए, मान लीजिए माँ की गोद में, और स्वप्न जगत में चला जाए, तो स्वप्न में वो कभी दुस्वप्न देख रहा है, अच्छा स्वप्न देख रहा है, हर तरह की चीज, और अचानक अगर कभी जैसे स्वप्न में होता है ना कि कोई सामना हो गया कोई भयानक परिस्थिति से, फिर हम जाग जाते हैं, जाके हमको लगता है अरे अभी हम जीवित हैं, अभी हम जागे हैं, वो सब एक स्वप्न था, दुस्वप्न था. तो उसी प्रकार से एक समय आएगा जब वास्तव में हम जागेंगे. तो जागेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए अवेकनिंग की अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके मापदंड दिए गए हैं, अलग अलग अनुभव दिए गए हैं, लेकिन इस योग में जागृति का क्या अर्थ होता है कि वो जाग गया, अवेकनिंग हो गई, एनलाइटेंड हो गया. तो इसका अवेकनिंग का अर्थ यहाँ पर ये, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म के परे की बात है, जब हम ये जान जाते हैं पूरी तरह कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिवाइन मदर, ए पोर्शन ऑफ हर बीइंग, पोर्शन ऑफ हर इन्फिनिटी. और जैसे ही हम ये जान जाते हैं, हमको ज्ञात हो जाता है, तो जीवन की पूरी धारा, गति, सब कुछ बदल जाती है. तो यह सत्य और ये निश्चित है, क्यों, क्योंकि इस सत्य को बिटवीन द डिवाइन मदर और सेंट्रल बीइंग जो हमारी जीवात्मा है, दोनों के बीच में ये कहानी लिखी हुई है. लेकिन यहाँ उसी कहानी को अब जैसे कहानी कंसेप्चुलाइज की जाती है, जैसे एक डायरेक्टर और जो फिल्म का एक्टर है दोनों मिलके एक कहानी बनाते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर, और उनको पता है पूरी कहानी क्या है. लेकिन अब देश काल की सीमा में जब फिल्म बनेगी तो उसको रील बाय रील उसको शूट करना पड़ता है. तो वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं, चैतसत्ता क्या कर रही है, उसी कहानी को रिप्रोड्यूस कर रही है. तो जिसको हम कहते हैं भूल, वो क्या होती है, जब हम शॉट को परफेक्ट नहीं दे पाते हैं, जब हमारे अंदर जहां हमको हंसना चाहिए वहां रो रहे हैं, या रो भी रहे हैं तो कन्विंसिंग नहीं है, या हंस रहे हैं तो हम अंदर से नहीं क्योंकि हम थके हुए हैं. तो इसी प्रकार से हम जब तक पूरी तरह वो अलाइन नहीं होते हैं उस विजन को जो प्रकट होना, और इस ये कहानी बड़ी सुंदर कहानी है क्योंकि इसका प्रारंभ डिवाइन मदर और शिशु के साथ है, और यही अंत में वही शिशु बड़ा होकर के डिवाइन मदर की गोद में अपने आप को पाएगा. तो उन्होंने जो डिसाइड किया हुआ है कि ये एक दिन मेरे किसी सत्य को धारण करेगा और प्रकट करेगा, तो उसकी ये कथा है, लेकिन बीच में उसके पूरी यात्रा है, कैमल मैन की, लायन मैन की, फिर चाइल्ड मैन की, जो तीन स्टेजेस है। देयर इज द इमेज ऑफ आवर फ्यूचर होप, हमारा फ्यूचर सिक्योर है। कई बार लोग परेशान होते हैं कि अगर हमसे ये भूल हो गई, वो भूल हो गई, इन सब के बावजूद सिक्योर है। ये डिवाइन मदर के पास जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, सिक्योर है। हम कितना भी कर लें, श्री अरविंद जी कहते हैं, द स्पिरिचुअल डेस्टिनी ऑलवेज स्टैंड्स, इट मे बी डिलेड बट इट इज नेवर, मतलब वो सदैव रहती है। वो डिले हो सकती है, वो हमारे हाथ में है इतना ही है कि हम उसको डिले या हेसन कर सकते हैं, लेकिन वो सत्य सदैव सत्य ही रहेगा और प्रकट होगा। देयर इज द इमेज ऑफ आवर फ्यूचर होप, देयर इज द सन फॉर विच ऑल डार्कनेस वेट्स, देयर इज द इम्पेरिशेबल हार्मनी, द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रडिक्शंस क्लाइंब इन हर, क्लाइंब टू हर एंड आर वन। कितनी सुंदर बात है, यहां पर युद्ध कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। यहाँ तो साधकों के साथ भी ऐसी बड़ी अद्भुत बातें हैं, ऐसे ऐसे साधक रहे हैं एक से एक बढ़कर, जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। कहते ना, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ऐसे साधक रहे हैं। लेकिन जब वो डिवाइन मदर के पास, मान लीजिए तीनों एक साथ खड़े हैं, तो तीनों उनके अंदर द्वेष भाव नहीं आ रहा है, वो पीछे चला जाता है। वो डिवाइन मदर से ऑर्डर्स ले रहे हैं, डिवाइन मदर के बच्चे हैं, डिवाइन मदर के अंदर वो सब एक हैं। और अगर हम ये स्मरण रखें तो हमारा जीवन बहुत बहुत क्या पूरा बदल जाएगा, कि इन द डिवाइन मदर वी आर ऑल वन। हम ये भूल जाते हैं, हम कितना भी कहते हैं थ्योरिटिकली इंटेलेक्चुअली, लेकिन अंत में वहीं पर आ जाते हैं, मैं हूँ, तुम हो। तो फिर तो ये योग की बात ही ख़त्म हो गई। योग तो हमको ये सिखाता है कि हाँ, बाहर हम सब अलग अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारा वे ऑफ लाइफ अलग है, बिल्कुल ठीक है, वो सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण है, अलग अलग स्टेज है इवोल्यूशन की, लेकिन हमारा जो सत्य है वो ये है कि इन द डिवाइन मदर वी आर वन। तो यहाँ पर इस सत्य को भी सुपर माइंड में ये दिखता है और वो प्रकट कर रहे हैं श्री अरविंद डिवाइन मदर के माध्यम से। देयर इज द ट्रूथ ऑफ विच द वर्ल्ड्स ट्रूथ्स आर श्रेड्स, जो अलग अलग डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, एनार्किज्म, इन सब के अंदर एक सत्य है। लेकिन अगर हम मन की भूमि पर देखते हैं तो सब एक दूसरे से कटे हुए होते हैं, लेकिन अगर हम उस सत्य में जाते हैं तो वहां पैट्रियार्की और मैट्रियार्की दोनों फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का अपना एक सत्य है और वो एक हायर ट्रुथ में रिकंसाइल कर जाते हैं। तो यहां पर वो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जिसके कारण लड़ाई होती है, रिलीजन और सेकुलरिज्म, इनमें भी जो सत्य छिपे हैं ये सब अपने सत्य को प्रकट कर देते हैं। द लाइट, ओके, द ट्रूथ, द लाइट ऑफ विच द वर्ल्ड्स इग्नोरेंस इज द शेड Till truth draws back the shade that it has cast, अज्ञान कहीं ऐसे बाहर से नहीं आया है, सत्य ने ही स्वयं को छिपाया है, मध्यम किया है, उसी के कारण यह अज्ञान है और एक प्रयोजन है, क्योंकि वरना तो कोई बाहर से, कोई माया ने स्वयं को इम्पोज नहीं किया है, अचानक ही सृष्टि में कोई शैतान ने, कोई डेविल ने अंधकार प्रकट नहीं किया है, उन्होंने ही, भगवान ने अपने आत्म गोपन के द्वारा स्वयं को छिपाया है और अज्ञान प्रकट हुआ है। द लव आवर हार्ट्स कॉल डाउन टू हील ऑल स्ट्राइव, वहां पर वो प्रेम के दर्शन होते हैं जिसको हम खोजते हैं। द ब्लिस फॉर विच द वर्ल्ड्स डेरेलिक्ट सॉरोज यर्न, तो अब इसका दिखाने के बाद फिर नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा और पढ़ लेंगे हम लोग, पेज 662, अंतिम चार पंक्तियां वहां से हम लोग शुरू करेंगे। इसे पूरा ये सुपरमेंटल सत्य का उद्घाटन है, हाईएस्ट ट्रुथ, तो इसको हम कह सकते हैं गॉस्पेल ऑफ द सुपर माइंड, और वो मृत्यु यानी ये लास्ट ट्रुथ है, जो चेतना के शिखर पे कितना भी व्यक्ति उठ जाए, ऋषि मुनि, यह वो अंतिम सत्य है जो मिसिंग है हमारी ट्रेडिशनल लिटरेचर में। और चूंकि ये मिसिंग है इसीलिए हम कभी संसार को ना समझ पाए पूरी तरह, ना भगवान को पूरी तरह, ना हमारे व्यक्ति के रोल को इस संसार में पूरी तरह। तो अब देखिए ये पंक्ति कितनी अद्भुत है, द ट्रुथ सुप्रीम वास्ट एंड इम्पर्सनल फिट्स फॉल्टलेसली द आवर एंड सरकमस्टेंस। अब ये उच्चतम सत्य बता रहे हैं, हमको लगता है ये भूल हो गई, गलती हो गई, अरे हम गिर पड़े, ऐसा क्यों हुआ, अरे यहां पर भगवान क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो वाणी देखिए फिट्स फॉल्टलेसली, और सच में अगर हम जीवन को धीरे धीरे अपने थोड़ा स्टेप बैक करके देखें उस सत्य की प्रकाश में जो वास्ट है और इम्पर्सनल है, हम केवल अपने को संकीर्ण, केवल मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे अहंकार को क्या हो रहा है, अगर उसे हट करके, तो वो ट्रूथ कैसे एक्ट करता है? वास्ट और इम्पर्सनल. वो केवल हमारे मोमेंटरी ईगो पर्सनैलिटी के पोषण के लिए नहीं है, पर उसके अंदर एक बहुत गहन सत्य है जो जितने भी हमारे जीवन में सरकमस्टेंस आते हैं, जितने भी सिचुएशन आती हैं, वास्तव में वे सब के पीछे वही एक सत्य है जो अपने आप को धीरे धीरे प्रकट कर रहा है, क्लमजीली समटाइम्स, लेकिन एक सत्य है जो अपने को प्रकट कर रहा है. इसीलिए फिट्स फॉल्टलेसली द आवर एंड सरकमस्टेंस, इट्स सब्सटेंस ए प्योर गोल्ड एवर द सेम बट शेप्ड इन टू वेसल्स फॉर द स्पिरिट्स यूज. तो वो सत्य जो है वो सीमित करता है स्वयं को वेसल्स के अंदर, शरीर के अंदर, मन प्राण. तो जितना हमारा वेसल पात्र छोटा होगा, जितना ये कठोर होगा, उतना अधिक ये सत्य छिप जाएगा, और जितना हमारा पात्र यानी मन प्राण शरीर जितना विशालता की ओर जाएगा, ऋजुता की ओर जाएगा, नमनीय बनेगा, वाइडनेस ऑफ प्लास्टिसिटी, उतना अधिक ये सत्य जो छिपा हुआ है वो अपने आप को प्रकट करेगा. तो यहाँ वो बात भी बिल्कुल प्रकट हो जाती है. इट्स गोल्ड बिकम्स द वाइन जार एंड द वाज. तो उसी से वास्तव में सब चीजें सुपरामेंटल सब्सटेंस से बनी है, तो वही जार भी बन जाता है, वही वाइन भी बन जाता है. ये अलग अलग नहीं है. सूफी मिस्टिक्स कहते हैं ये वाइन, ये जार है, शरीर एक पात्र है केवल, इसके अंदर जो भरा है कंटेंट है, मन प्राण ये सब की जो गति है वो उसका कंटेंट है, लेकिन इसके परे बनाने वाला है, लेकिन ये तीनों एक हैं. और उन्होंने क्यों इस तरह का जार बनाया, इसलिए नहीं कि ये अंतिम है. जैसे आप किसी पात्र को एक लंबी प्रोसेस से पास करें तो आप देखेंगे कि पहले वो कच्चा है, वही मिट्टी, फिर वही मिट्टी धीरे धीरे वो थोड़ी उसको सेट की जाती है, फिर उसको अग्नि को दिया जाता है, फिर उसके ऊपर अगर कोई छाया होती है, कोई दाग होते हैं उसको मिटाया जाता है, फिर उसको पेंट किया जाता है, इस तरह से वो पूरी एक ब्रिक बन के हम सबके सामने प्रकट होती है. तो सुपरामेंटल सब्सटेंस, क्योंकि भगवान के पास कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है, वही धीरे धीरे अपने आप को प्रकट करता है इस ग्रॉस मैटर के रूप में. और चूंकि वह ये देह बना है, इसीलिए यह देह एक दिन दिव्य देह बन सकती है. तो ये उसकी लॉजिक है. द ऑल देयर इज ए सुप्रीम एपिफेनी, द ऑल वंडरफुल मेक्स ए मार्वेल ऑफ ईच इवेंट. यहाँ पर हम सारी घटनाओं को बहुत ही सीरियस, माँ कहती हैं कि एक बर्डन लेके घूमते हैं, और भगवान की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वो क्या है इवेंट, दे आर ए मार्वेलस वंडरफुल डिस्क्लोजर. आप अगर देखेंगे श्री अरविंद श्री माँ के जीवन में, अब एक छोटी सी कहानी, बहुत सारी कहानियाँ हैं, अमृतदा की तो मैंने कई बार चर्चा की है, परंतु एक कहानी है जब चंपकलाल जी और निरोध दा उनके बीच में, या किसी दो लोगों के बीच में, एक तो चंपकलाल जी थे, दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई, थोड़ी ज़्यादा हो गई, थोड़ी कहा सुनी हो गई, और उसमें एक दूसरे से थोड़े कहते ना हीटेड एक्सचेंज हो गया. जब माता जी को ये बात, जब श्री अरविंद को ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ, श्री अरविंद कहते हैं ओ स्वाभाविक है, जब अग्नि और अग्नि मिलेगी तो क्या होगा, और अभी तो मिडसमर है. अब उन्होंने इस बात को इतने सहज रूप से ले लिया, इसमें कोई उन्होंने किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन या उसको ऐसा करना चाहिए था वैसा नहीं करना चाहिए था, कोई मॉरल जजमेंट नहीं है. उन्होंने इसको एक बड़े ही सुंदर ढंग से कि हाँ ये तो होता है, जब अग्नि से अग्नि मिलेगी तो और क्या होगा, दोनों के अंदर अग्नि है, अलग अलग लेवल की अग्नि है. दुर्वासा ऋषि को अगर हम देखते हैं तो ऐसा, तो ये अग्नि से अग्नि के मिलन से ये होता है. तो वहां पे द ऑल वंडरफुल मेक्स ए मार्वेल ऑफ ईच इवेंट, द ऑल ब्यूटिफुल इज ए मिरेकल ऑफ ईच शेप, द ऑल ब्लिसफुल स्माइट्स विद रैप्चर द हार्ट्स थ्रॉब्स. तो ये सारा इसमें सत्य डिवाइन मदर प्रकट करती हैं, ये अनंत है, और यही वो अंतिम भाग है जहाँ पर अंत में ये सब कह के डिवाइन मदर कहती हैं, लेकिन हे मृत्यु यह तुमको मैं कैसे बता सकती हूँ. अब इसमें चूंकि हम यहाँ तक पहुँच गए तो ये अंतिम पार्ट थोड़ा सा है. जब वो ये ऐसा कहती हैं तो डेथ कहती है कि यदि ये सच है कि तुम्हारे अंदर संपूर्ण सत्य है, कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है, तो तुम उस सत्य को मेरे सामने प्रकट करो ताकि मैं तुम्हारे चरण छू करके पूजा कर सकूं. तो यहां पर मार्ग भी दे दिया गया है कि हमारे अंदर कितना भी अंधकार क्यों ना हो, यदि हम डिवाइन मदर के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हैं और उनकी पूजन करते हैं, उनके पूजन का तो माध्यम बहुत सरल है, उनका कर्म ही पूजा है, उनका काम करना ही यही माँ चाहती हैं। वो कोई धूप दिया बत्ती और पाँव में लोट करके वो पूजन नहीं चाहती हैं। हाँ, पाँव उनके स्पर्श करना ये तो बड़े आनंद का, वेयर शी प्रेसेस हर फीट कोर्स मिरेकुलस स्ट्रीम्स ऑफ एन एंट्रांसिंग आनंदा, लेकिन उनका पूजन क्या है? कर्म, उनकी सेवा, शेरविंद माता जी का काम, यही उनका पूजन है। तो जैसे जैसे हम ये करते हैं तो ये सत्य, सारे सत्य जो सावित्री के अंदर हैं, ये हम सबके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। जय माँ।